तो मैं राज शब्द का तात्पर्य बतला रहा था। राज माने क्या? प्रेम की पराकाष्ठा का नाम है राग शब्द से होता है। हृदय में जिस भावना से कृष्ण की आराधना होती है प्रेम से, वो राज शब्द का तात्पर्य है। अपराध, अपगत हैया से अपगत हुआ है, निकल गया है राध जिससे, वो अपराध। अर्थात जो हमारे आराध्य देव हैं उनको प्रसन्न करने की जो भावना है वो नष्ट हो जाती है जिस क्रिया से, उसका नाम है अपराध। फिर से समझिए, अपराध किसको कहते हैं? हमारे आराध्य अभी गुरु और भगवान हैं। ऐसी क्रिया हम यदि करते हैं, ये भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर में जो आई है थोड़ी बहुत, जिस क्रिया से, वृद्ध क्रिया से, वो राग कृष्ण की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, प्रसन्न करने की प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं अपराध। आ रहा है समझ में? हम कृष्ण की सेवा भजन करना चाहते हैं, किंतु हमने क्या किया, कृष्ण की निंदा करने लगे, वैष्णवों की निंदा करने लगे, गुरु की निंदा करने लगे, तो ये कृष्ण की सेवा करने की जो प्रवृत्ति थी वो ध्वंस हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं अपराध। इसलिए आराध्य, आराध्य किसको कहते हैं? जो हमारे प्रेम के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एम हैं, वो आराध्य हैं। आराधक कौन है? जो आराधना करता है। और आराधना किसको कहते हैं? आराधक का आराध्य के प्रति जो भावना मिश्रित, जो सेवामयी भावना है, इसको कहते हैं आराधना। भक्त भगवान और भक्ति का भी यही तात्पर्य है। यदि भगवान के प्रति आपकी वृत्ति लगती है, उनकी सेवा करते हैं, तो ये तो भक्ति होगी। इसलिए शिव के प्रति, शंकर जी के प्रति जो आप करेंगे, यदि शंकर जी को मान लिया जाए, कौन? विष्णु, सदा शिव विष्णु मान लिया जाए, तब तो उनकी सेवा को भक्ति कहेंगे। उस समय भगवान से अभिन्न है, विष्णु तत्व है। किंतु जब जीव तत्व की कोटि में आएंगे तब उनकी भक्ति को भक्ति नहीं करेंगे ना? अपने पिता की भक्ति करते हैं, ये शब्द तो चालू है। हम अपने पिता की भक्ति करते हैं। पिता तुम्हारे भगवान है कि नहीं, देखो तो। यदि भगवान है तब तो भक्ति होगी और तुम भक्त होगे, और यदि नहीं तो नहीं। इन सब चीजों को समझते नहीं। आज जवाहरलाल की जयंती, गांधी जयंती, ऐसे नहीं होता है। रोहिणी नक्षत्र हो, भादों का महीना हो, उसमें शुक्रवार या शुक्रवार हो, और उसके साथ में अष्टमी तिथि लगी हुई हो, और वो कृष्ण का जन्म हो, तब तो वो जयंती होगी, नहीं तो कृष्ण के जन्म को भी जयंती नहीं कहते।
कभी कभी जयंती
बहुत कम जयंती आजकल तो, जवाहरलाल की जयंती, गांधी जयंती, बुद्ध जयंती, क्या क्या जयंती सब हो रही, समझते नहीं है, आरोप करते हैं। इसलिए भक्ति भी दूसरों देवताओं पर कर करके भक्ति करते हैं। इसलिए ये सब चीजों को जानना जरूरी है। इसे श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई श्लोक नहीं बतलाया, काश्चित, काश्चित माने कोई एक गोपी, उद्धव जी गए हैं वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन, किस लिए गए? किस लिए गए? मथुरा में गोपियां जैसे वृंदावन में तड़फ रही हैं कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए, ऐसे कृष्ण भी अपने आराध्य राधिका और गोपियों के लिए, भक्तों के लिए तड़प रहे हैं, अपने भक्तों के लिए तड़प रहे हैं। परस्पर वो होता है। गोपियां अपने विरह को लाखों गोपियां एक दूसरे पर प्रकट करके अपने विरह को कम कर देती हैं। नदी में खूब जोर से बाढ़ आई, नदी क्या करती है अपने दोनों किनारों पर पानी को फेंक देती हैं और ऊंचा उठ नहीं जाती, जहां तक हो सकता है पानी को इधर उधर में फेंक करके और चलती हैं, उनका दुख कम हो जाता है। ऐसे गोपियां अपने इस महान दुख को, विप्रलंब भाव को अपने आप बांट लेती हैं, कहती हैं वो उनसे उनका दुख कुछ कम हो जाता है। कृष्ण का जो विरह है मथुरा में किससे कहें, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला उस वैसा प्रेमी नहीं किसको जो सुने, लोग कहेंगे तो वो हंसेंगे। जैसे गोपियों की प्रेम की बात हम कहेंगे तो साधारण जो कि भगवान के लीला कथाओं में विश्वास नहीं करते हैं वो हंसेंगे, अरे देखो तो ये तो नायक नायिका कि हमारी भी अपनी स्त्री से ऐसा प्रेम कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात, ये तो कामी पुरुषों का काम है, ये कोई थोड़ी अच्छी बात है। हाँ, चक्र सुदर्शन लिया, महाभारत के युद्ध में युद्ध किया और बड़े बड़े असुरों को, कंस इत्यादि को पछाड़ दिया। महाभारत के कृष्ण जो है वो हाँ ठीक है, वो हमारे आराध्य है। ये कृष्ण तो चोर झूठा लबार, ये क्या आराध्य हो गया? तो इसलिए ये समझ नहीं पाते, कृष्ण अपने दुख को बांट नहीं पा रहे, बड़े दुख हैं किससे कहूं। देखा जी उद्धव कुछ संसार से निवृत्त है, परम वैराग्यवान, भगवत तत्व को जानने वाला है। भगवत तत्व का विचार दो प्रकार से होता है, एक भगवान का ऐश्वर्य भाव, हम लोग जो नहीं कर सकते वो क्षण मात्र में कर लेंगे, ये ऐश्वर्य है, उनके समान कोई विद्वान नहीं, उनके समान ऐश्वर्यशाली नहीं है, उनके समान कोई गुणी नहीं है, क्षण मात्र में जो चाहे कर दें मनुष्य के लिए संभव पर नहीं है, ये ऐश्वर्य का विचार। जैसे नारायण को, नारद जी भी आएंगे उनके चरणों में झुक जाएंगे, नारायण का कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, सभी उनके सामने झुकने के लिए बाध्य हैं, किंतु राम है, राम दशरथ के यहां भी बाध्य हैं, उनके माता पिता हैं, वो अपने माता पिता वशिष्ठ जी जाएंगे उनके चरणों में झुक जाएंगे, विश्वामित्र जी आएंगे क्या करेंगे, और जनक जी और सुनैना जी आएंगे और कौशल्या मैया तो क्या करेंगे, ये जितने भी ब्राह्मण आएंगे सब ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण आया योग्य है उसको प्रणाम करेंगे, नारायण करेंगे, वो अपने आसन से हिलेंगे नहीं, बस ऐसे कर देंगे, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु, बस। नारद जी आए, कोई आए, उनका कोई माता पिता ही नहीं है, ये ऐश्वर्य भाव है, किंतु भक्त लिए इससे संतुष्ट अधिक नहीं होते। भगवान को अपना बना करके अलिंगन पास में बद्ध करना चाहते हैं, उनसे प्रेम की दो बातें करना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ माधुर्य। माधुर्य में ऐश्वर्य क्रोड़ीभूत होता है, क्रोड़ीभूत माने क्या, क्रोड़ीभूत मन उसी में सब समय रहता है। माधुर्य इतना व्यापक है, पहले ऐश्वर्य माधुर्य समझिए, चाहे ऐश्वर्य हो चाहे न हो, नर लीला का अनुरूप उनकी जो लीलाएं चल रही हैं ये माधुर्य लीला है, और जब कोई भी ऐसा नहीं कर सके नर लीला के अतिक्रम करके, उससे बढ़ करके मनुष्य कोई ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकता है, ऐसी जो भगवान की लीला है वो ऐश्वर्यमयी लीला, नारायण ऐश्वर्यमय है, कृष्ण ऐश्वर्य तो उनमें है ही है, माधुर्य के द्वारा ये सब आच्छादित है। इसलिए कृष्ण मथुरा में ऐसा कोई नहीं मधुर रस का भक्त है जिसे कह सकें, केवल ऐश्वर्यमय भगवान के भक्त लोग हैं, उनको देवकी नंदन और क्या वासुदेव नंदन, वासुदेव कृष्ण, इसीलिए गीत भागवत में के पहले में नमो ओं भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्र के द्वारा उनकी आराधना की गई। ध्रुव इत्यादि ने उनकी स्तुति की, मधुर जलीला में प्रवेश। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये यहाँ किससे कहूं, उद्धव तो कुछ योग्य है, यदि इनको गोपियों की पाठशाला में भेज दें और कुछ दिन प्रेम अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, इसलिए उसको वहां पर भेजूं गोपियों के पाठशाला में, जो हमारी भी गुरु और प्रिंसिपल रही हैं, उस पाठशाला में भेजूं जहां पर मैंने प्रेम का पाठ सीखा, उस प्रेम की पाठशाला में इनको भी भेज दूं, तो उनकी कृपा से कुछ प्रेम का पाठ पढ़ करके आएगा तो इसे खोल करके हम कुछ बातचीत कर सकें। इसलिए उद्धव जी को भेजा गया। उद्धव जी भगवान का नाम कीर्तन करते हुए ब्रज में पधारे, जरा एक कीर्तन कर दो तो कुछ। तो उद्धव जी को भेज रहे हैं। उद्धव जी मथुरा के रहने वाले हैं, मथुरा की दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं। उनके आराध्य कौन है? वसुदेव के लड़के, वसुदेव नंदन। ऐश्वर्य भूमि मथुरा है, वहां पर प्रकट स्थित होती है। कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके जन्म लिया और फिर द्विभुज बन गए, इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों वहां पर प्रकाशित। किंतु ये समझ रही है, संक्षेप में ये बतलाता हूं, वैकुंठ में जितना ऐश्वर्य है उससे लाखों कोटि ऐश्वर्य गोलोक में है, और गोलोक में तीन लोक है, कृष्ण लोक, एक है द्वारका, मथुरा और ब्रज। ब्रज को गोकुल, वृंदावन भी कहते हैं या गोकुल ब्रज भी कहते हैं। इन तीनों में मथुरा में गोलोक में जो द्वारकापुरी स्थित है, यहां पर ऐश्वर्य अधिक और उससे कम ऐश्वर्य मथुरा में, और उससे कम ऐश्वर्य वृंदावन में। अब उधर से चलिए, वृंदावन में ब्रज में अधिक माधुर्य, उससे कम माधुर्य मथुरापुरी में, और उससे कम द्वारका में। क्रम से जब एक दृष्टि से चलेंगे तो नीचे से ऊपर और ऊपर से फिर नीचे। मैंने पहले बतलाया कृष्ण या भगवान की वो लीलाएं जो कि साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, जब उनका प्रकाश करते हैं तो उनको ऐश्वर्यमयी लीला कहते हैं। नारायण का इस जगत में लीला प्रकाश ही नहीं है, वो अवतरण नहीं करते। किंतु गोलोक बिहारी जो हैं, अवधेश जो हैं, अवध बिहारी जो हैं, ये वैकुंठ का ही एक प्रदेश है, उससे कुछ ऊंची वाली ये लोग उतरते हैं इस जगत में, अपने लीलाओं का अवतरण कराते हैं। तो इस जगत में जब उतरते हैं राम भी, राम और कृष्ण ये सभी विष्णु नारायण सब तत्वतः एक हैं। जैसे एक चंद्र की बहुत सी कलाएं होती हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, पूर्णिमा, ये अलग अलग नहीं है। हम एंगल ऑफ विजन से इस पृथ्वी से देखते हैं, यदि एक स्थिति वहां पर चले जाएं जहां पर पृथ्वी की छाया चंद्र पर नहीं पड़ती है, पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होती है, तो सब समय पूर्णिमा देखेंगे चंद्र में। तो यहां से हम एक ऐसे एंगल विजन से देखते हैं जहां से पृथ्वी से चंद्र पर छाया पृथ्वी की लगती है, सूर्य की पूरी रोशनी नहीं गिल पड़ती है, इसलिए ये कला है। किंतु चंद्र एक ही है, उसी प्रकार से भगवान एक ही हैं। उपासना के प्रतिबिंब से, उपासना के दृष्टिकोण से एक ही प्रभु इतने रूपों में दिखते हैं, भगवान में वो भेद नहीं है। किंतु उपासकों के उपासना के तारतम्य से, आराधना के तारतम्य से वो दिख पड़ते हैं ऐसे, वो कलाओं के रूप में समझिए। यदि पूर्ण जैसे चंद्रमा का पूर्ण है प्रकाश, वैसे ही भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश भगवान में होता है, इसको पूर्ण मान लिया गया। किसको? रामचंद्र जी को भी 12 कलाओं में पूर्ण माना गया। सूर्य में कितनी कलाएं होती हैं? 12 कलाएं। इसलिए 12 कलाओं में सूर्य भी पूर्ण है, और चंद्र में होती हैं 15 कलाएं या 16 कलाएं, 16 कला में वो पूर्ण है। इसलिए दोनों पूर्ण हैं, किंतु पूर्ण होने पर भी कुछ पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतर का विचार होता है भगवत तत्व में, रस की दृष्टि से, शक्ति के प्रकाश की दृष्टि से। इसलिए श्रीमद् भागवत में उन्होंने घोषणा की, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें 12 रस हैं कृष्ण में प्रकाशित हुए। रस तो सभी में है, राम में भी वही है, कृष्ण में भी वही है, नारायण में भी वही है, किंतु कृष्ण में जिस प्रकार से 12 रस परिपूर्ण रूप में परिलक्षित होते हैं और जगह परिलक्षित नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ विजन वहां पर है, कुछ छाया सी है। अब देखिए, नारायण को कोई चाहे ये हमारे बेटे हो जाएं, बेटे हों, ये संभव, उनका माता पिता नहीं। ऐसी ऐश्वर्य भूमि है, उपासना की एक वो दृष्टि है। कोई नारायण को चाहे जे गले से लगा लें, भाई असंभव है, उनके चरणों को ही दूर से प्रणाम कर। लक्ष्मी जी उनके चरणों को पलोट सकती हैं, दूसरा कोई। नारद भी चाहे बस स्तव स्तुति करेंगे दूर से। अब इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, हनुमान जी को लीजिए। हनुमान जी क्या करते हैं? शंकर जी ही हनुमान बने हैं, दूसरे नहीं है। वो राम के पैरों को पलोट सकते हैं, अपने कंधे पर चढ़ा सकते हैं, उनकी और विविध प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। जो वैकुंठ में नारायण की नहीं होती, इसमें कुछ अपनत्व भाव लेकर के रामचंद्र जी ने माता पिता भी स्वीकार किया, दशरथ कौशल्या इत्यादि की विविध प्रकार की लीलाएं की। नारायण की कौन सी लीला अधिक से अधिक देख सकते हैं कि गजग्रह का युद्ध में, वो भी स्वयं नारायण नहीं, उनका प्रकाश आया। अब हनुमान जी चाहे राम को, जहां पर सीता जी के साथ में एकांत में बैठ रहे हैं और उनके पलंग पर बैठ जाएं, ये कर सकते हैं? अपना जूठा राम को दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते, संभव नहीं। कृष्ण हनुमान जी कहेंगे जरा आप घोड़े बन जाइए, मैं आपके ऊपर में चढ़ जाऊं, कहेंगे? यह संभव उनके लिए नहीं, उनके आराध्य देव है ना। अब थोड़ा सा ब्रज में आइए, सीताम सुबल इत्यादि सखा हैं, पलंग पर बैठे हुए हैं कृष्ण, और धत्तेरी की कह करके और उछल करके कूद करके, अरे अभी सो रहा है कन्हैया, रगड़ देंगे उसे और उसे उठा देंगे, पकड़ लेंगे और लड्डू मिलाए वो उसको खा रहे हैं और कृष्ण के मुख में ठूस देंगे। हनुमान के द्वारा संभव नहीं है, राम के कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके, अपना जूठा खिलाए। सबरी बेबी ने खिलाया, वो जूठा बेर नहीं, उस पेड़ कई चख करके, उस पेड़ से रख करके रखती थी अच्छे अच्छे फल, जूठा नहीं। राम के लिए संभव नहीं है ऐसा उसके अंदर में बड़ा मुश्किल। सीता जी भी अपना जूठा राम को नहीं दे सकती, और इधर उनके सखा लोग कैसे हैं? यशोदा जी क्या करेंगे? नंद बाबा वो तो बैठा करके खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। रामचंद्र जी भी दशरथ की गोदी में बैठे हुए हैं, अपने भी कभी कभी खाते हैं और उनको कभी कभी दे देते हैं उन दोनों को। ये तो वहां पर तो संभव है कुछ, और यहां श्रीदाम सुबल इत्यादि खा रहे हैं, अरे क्या गाली, अरे सारे क्या कर रहा, काने क्या क्या उनका नाम पुकारेंगे, और कहेंगे अब तू हमको घोड़ा बनाया, अब तू घोड़ा बन और हम चढ़ेंगे, हमने हरा दिया तुमको, कृष्ण को पराजित कर दिया। पहले तो कृष्ण ने हरा दिया तो वो उनको उनके कंधे पर चढ़ करके दुल्की चलाने लगे, तो वो चल करके गए। अब जब श्रीदाम ने हरा दिया कृष्ण को तो कृष्ण हार गए, अब कहा जाए तुम चलो उनके कंधे पर चढ़ करके घोड़ा जैसे चलाते हैं, ये हनुमान जी के लिए, भरत जी के लिए, लक्ष्मण के लिए, विभीषण के लिए संभव नहीं है। और आगे बढ़िए, यशोदाजन जी ने जिस प्रकार से अपने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया, ओखल में बांध दिया, कृष्ण रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, काली और गंगा दोनों नदियां बह रही हैं जमुना, और सिसक सिसक करके रो रहे हैं, काला उसके ऊपर में काला काजल का और भी रंग बढ़ गया, एक तो करेला अपने ही तिथि नीम के ऊपर में चढ़ गई और तिथि हो गई कड़ी हो गई, ऐसे कृष्ण रो रहे हैं, कहां भगवत्ता गई, आज तक किसी भी रूप में नहीं बंधे, प्रेम के जरा बंधे तो ये कृष्ण प्रेम के रूप में। और क्या आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, गोपियों ने कहा कि हमारे नित्य में नुपुर छिटक गया है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, दौड़ करके ला करके बांध रहे हैं, कभी किसी भागवत का सिक्त नहीं कहीं कहा गया, ये प्रेम किस लिए, कृष्ण रस स्वरूप है, नित्य में गोपियां थक गई, पसीने के बूंदे आ गए तो क्या कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं परब्रह्म हो करके, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौक्षाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आज गोपियों के ये पसीने को अपने उत्तरीय से पूछ रहे हैं, थक गई। राधा जी थक जाने के बाद कृष्ण का अवलंबन कर लेती हैं, उन पर रख करके और थोड़ा सा कमर पर हाथ रख करके विश्राम करती हैं उस पर ब्रह्म को, ये कभी संभव है, ये है मधुर लीला है कृष्ण, साधारण लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए व्यास जी समस्त शास्त्रों का निर्माण करके प्रसन्न नहीं थे, ये सब लीलाओं को जो पर ब्रह्म ऐसा भी है, ये प्रेम के लिए रोता है, प्रेम के लिए तड़पता है, वो रस स्वरूप है, रसो वैसा, ये वेद और वेदांत का ये यहाँ पर श्रीमद भागवत में बतला, निगम कल्प तरोर गलितंग फलम सुख मुखाद अमृत दर्शन जुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। ये सब विचार इन्होंने देखा, ये उद्धव तो ये सब कुछ जानता नहीं, ये सब पढ़ाने के लिए प्रेम का पाठ गोपियों के पास में भेजो। उद्धव कहा जी मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं, विलाप में विरह में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, जाओ गच्छ उद्धव सौम्य पतिमा आवह पितृणो पतिमा आवह गच्छ उद्धव ब्रज, हे सौम्य हे उद्धव तुम मेरे प्यारे सखा हो, तुम हमारे अभिन्न हृदय हो, लक्ष्मी और बलदेव भी हमारे बड़े प्यारे हो, हमारे हृदय से भी अधिक प्यारे हो, ऐसा कोई हमारा भक्त नहीं। ऊपर से उनको कह रहे हैं जाओ ब्रज में, हमारे माता पिता विरह में तड़प रहे हैं, और गोपियां गोपियां कैसी मदगत चित प्राणा, गोपियां क्या है मन मना भव का ये मूर्ति है, दिन रात हमारी चिंता करके बस इसीलिए जीवित हैं, कल कृष्ण आएंगे परसों आएंगे, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है इसलिए आएंगे, उनको सांत्वना देना, वो ऐसे सांत्वना नहीं होगा मैं जो संदेश दे रहा हूं मत संदेश ही विमोचया, उनका यह जो विरह है मेरे संदेश मैं जो कह रहा हूं यही ठीक ठीक कहना, अपनी बात कुछ मत लगाना, बस उन्होंने संदेश दिया, बहुत विस्तृत है, मैं तो संक्षेप में थोड़ा सा ये बतलाने जाता हूं, एक काश्चित शब्द लगा है काश्चित गोपी, कोई गोपी, उसका अर्थ ये सुखदेव गोस्वामी जी ने महाभागवतों ने वल्लभाचार्य हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने उसका अर्थ लिया। काश्चित कृष्ण के व्यक्तित्व को मनोमुग्ध कर देने वाली, जिसके निरंतर उसके चिंतन में ध्यान में रहते हैं, काम अने ये होता है कृष्ण की शक्ति, पराशक्ति, वो है राधा जी। इस काश्चित शब्द का यही अर्थ है, इसी को हम बतला रहे हैं। अभी तो 8:40 हो गया, अब कल इसके संबंध में थोड़ा सा हम विस्तृत करेंगे, फिर कभी भगवान हमको बुलाएंगे, आप लोग यदि इच्छा आप लोगों की होगी तो कुछ विस्तृत रूप में इस सब चीज का आस्वादन मैं कराऊंगा। यही भागवत का मूल चीज है, हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, या प्रेम, प्रेम ही हमारा धर्म है, यही हमारा प्रयोजन है। यदि इसका एक छींटा फीटा भी मिल जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे कल 10:30 का प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम भाई आप लोग बतला दीजिए, कल का क्या प्रोग्राम है, कहाँ गया है विष्णु?